सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों के प्रति निर्वैर, उसके अंदर बैर की भावना नहीं होती है। इसलिए वो क्या चाहता है, प्रचार करना चाहता है। कृष्ण भावना व्रत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका बैर नहीं है। अगर बैर नहीं है तो वो जरूर करेगा। अगर आप नहीं प्रचारित करते कृष्ण भावना व्रत का समाज में, इसका मतलब आप समाज के बैरी हैं, है ना। माता पिता अगर बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं तो वे अपने आप बैरी कहे जाएंगे। कहते ना, माता पिता बैरी भये जिन न पढ़ाए बाल। माता पिता बैरी माने जाएंगे अगर वो नहीं शिक्षा देते, नहीं पढ़वाते, नहीं पढ़ाते बच्चे को, है ना। तो दुश्मन है वो माता पिता। अब ये नहीं कह सकते नहीं नहीं वो खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, हाँ, पालते हैं अपने बच्चों को तो माता पिता हैं। नहीं, माता पिता को दुश्मन माना जाएगा। अब भगवान ने कहा है निर्वैरा सर्वभूतेषु, इस सब प्राणियों के प्रति वो निर्वैर है। तो इसका मतलब यही है कि जो जन सामान्य है अज्ञानी है, जन सामान्य को ज्ञान नहीं है कृष्ण भावनामृत का, अमृत का ज्ञान नहीं है, तो अमृत देता है। अगर अमृत नहीं देता है तो क्या है, बैरी, बैरी है। आप अमृत पी रहे हो, है ना, और जो आपके आसपास जो लोग हैं उनको अमृत नहीं मिल रहा है, है ना, तो आप क्या है, आप बैरी हैं। उन सब दुश्मन है आप, है कि नहीं, ये दुश्मनी है, है? आप कहोगे नहीं दुश्मनी कहां, दुश्मनी है? आप किसी का कुछ भी नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप किसी को मार पीट नहीं दे रहे हैं, है ना, दुश्मनी कैसे है? लेकिन नहीं, ये दुश्मनी है। अगर आप नहीं बात करते, आप नहीं कुछ सहयोग करते दूसरों के साथ में, तो दुश्मनी है, है ना। बहुत जरूरी है कि अपने जो है आसपास के लोगों के साथ में आप सहयोग करो, हा? अगर नहीं सहयोग करते हैं तो आप दुश्मन हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। अब इतिहास में आप प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देते हैं कि प्राचीन काल का जो इतिहास है उसमें क्या है। तो एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्हें अभक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। निस्संदेह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। तो पहला उदाहरण तो प्रभुपाद ने दिया जीसस क्राइस्ट का। तो जीसस क्राइस्ट को सूली में चढ़ा दिया गया, उन दुष्टों ने जो शासक थे सूली में चढ़ा दिया केवल इस कारण से कि वे ईश्वर चेतना का प्रचार कर रहे थे। लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया, वो अपने कार्य में लगे रहे, है ना। तो एक जीसस क्राइस्ट का उदाहरण है, और दूसरा उदाहरण किसका प्रभुपाद ने दिया, प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज, है ना, तो उन्होंने भी सब प्रकार के विरोधों के बावजूद भी प्रचार का कार्य बंद नहीं किया। और हिरण्यकश्यप इतना ज्यादा विरोधी हो गया प्रहलाद महाराज के कि अपने हाथ से मार डालने के लिए तैयार हो गया हिरण्यकश्यप। नहीं तो उसके पहले हिरण्यकश्यप अपने हाथ से नहीं मारना चाहता था प्रहलाद महाराज को। उसने और कई उपाय किए कि मुझे अपने हाथ से ना मारना पड़े, तो अपने हाथ से ना मारना पड़े इसके लिए और बाकी जितने भी उपाय हो सकते हैं सब उसने कर लिए। और जब प्रहलाद महाराज की रक्षा हुई, भगवान रक्षा करे, तो हिरण्यकश्यप फिर बहुत भयभीत हो गया, ये सोच करके कि इसके अंदर बहुत शायद मेरे से ज्यादा शक्ति है, कि ये अपनी रक्षा कर लेता है, और अगर मैं इसके सामने जाऊंगा तो फिर बदला लेगा, इसको इसका खून खोलेगा मुझे देख करके कि मैंने इसको मरवाने के सब प्रकार के उपाय किए, तो ये मुझे मार सकता है। इसलिए हिरण्यकश्यप डर के मारे प्रहलाद के महाराज प्रहलाद महाराज के सामने नहीं आया, और बहुत चिंतित हो गया है ना कि मेरी मृत्यु हो सकती है, अब अगर मैं जाऊंगा तो जरूर मुझे मार डालेगा। जबकि प्रहलाद की अपनी शक्ति थोड़ी थी, वो तो भगवान की शक्ति से उनकी रक्षा हो रही थी। लेकिन बाद में फिर उनके जो प्रहलाद के गुरु थे छन्नमर्क, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप चिंता मत करो, ये तो बच्चे हैं, बच्चे तो भूल जाते हैं, थोड़ा सा प्यार मिलता है तो सब भूल जाते हैं, बैर को भूल जाते हैं, तो आप चिंता मत करो, और आपको तो वरदान प्राप्त हुआ है ब्रह्मा जी का, आपका तो कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जब तक हमारे पिताजी शंकराचार्य जी नहीं आते हैं तब तक इसको गुरुकुल में डाल देते हैं और बांध करके रखते हैं जिससे भाग ना जाए, जब शुक्राचार्य जी आएंगे तो फिर विचार करेंगे कि इसका क्या किया जाए। तो गुरुकुल में जो है ना प्रहलाद को रख दिया, और हर प्रकार से मनाही थी प्रहलाद को कि किसी प्रकार के अपने सिद्धांत की चर्चा नहीं करेंगे, अपने सिद्धांत का प्रचार नहीं फैलाएंगे। प्रहलाद जी को बहुत ही गलत माना गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने जब भी मौका मिला उस मौके का फायदा उठाया, और जो गुरुकुल के बच्चे थे उनको सिखाया पढ़ाया कृष्ण के बारे में, नहीं जबकि उनको पता था कि उनका पिता जो है सबसे ज्यादा नफरत करता है इसी बात से, इसके बावजूद उन्होंने सिखलाया। तो क्यों सिखलाया? प्रभुपाद जी कहते निर्भय रहा, क्योंकि उनका बैर नहीं था, बैर नहीं था, और वे जो ना अज्ञानी थे। अगर बैर नहीं है तो फिर वो कृपा करता है, तो प्रहलाद जी ने कृपा करी उनके ऊपर, है ना। तीसरा धाम दिया प्रभुपाद ने किसका? हरदास ठाकुर का, है ना। तो हरदास ठाकुर भी, है ना, तो क्योंकि मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए जो मुलुकपति वहां का जो शासक था, है ना, तो उसने फिर आदेश दे दिया कि हरिदास जो है अगर हरि नाम को नहीं छोड़ते हैं तो उनको कोड़े से मार मार करके खत्म कर दो। हरिदास ठाकुर को कोड़े से मार रहे थे पहले जो जल्लाद है, लेकिन हरिदास ठाकुर मार खाते हुए भी जोर जोर से हरि नाम ले रहे थे, जोर जोर से हरि नाम ले रहे थे, है ना। क्यों जोर जोर से क्यों ले रहे थे? हाँ, प्रचार करने के लिए, बाकी लोगों का प्रचार करने के लिए जोर जोर से हरि नाम ले रहे थे। तो ये जो है निर्भय रहा सर्वभूतेषु, बोलते हैं ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाह रहे थे, और ये कठिन कार्य है, ये कठिन कार्य है। क्यों कठिन कार्य है? कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना क्यों कठिन कार्य है? क्योंकि यहां पर माया विरोधी है, और माया के एजेंट सब जगह हैं, है ना, इसलिए बहुत कठिन कार्य है। लेकिन निर्भय रहा प्रभुपाद कहते हैं, कठिन कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के ही कारण कष्ट भोग रहा है, अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये पांचवा सूत्र है निर्भय रह सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के प्रति डर रहित होना। आगे प्रबल कहते हैं सारांश है कि कृष्ण ने अपने छल भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहां तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे अनादि, कि वे आदि विश्वरूप या विष्णु के व्यक्ति में है, समस्त रूपों के उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्ति के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजे श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि हम किस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद्गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने ये पांचों बातें समझाई हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है उसको पांचों चीजों का पालन करना चाहिए। अब मैं चाहूंगा आपकी ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न
प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि कृष्ण के बारे में, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब हम कृष्ण को स्मरण करें तो क्या चीज स्मरण करें, तो हम कृष्ण कैसे देखेंगे, क्या सोचेंगे?
इनका प्रश्न है कि जहां तक कृष्ण का चिंतन करने की बात है तो हमें कृष्ण के बारे में क्या चिंतन करना चाहिए। कृष्ण का स्मरण, एक तो नाम का स्मरण, नाम स्मरण, कृष्ण के नाम का स्मरण किया है, उनका रूप का स्मरण, उनके गुणों का स्मरण, उनके लीलाओं का स्मरण, नाम रूप गुण लीला, इनका स्मरण करना चाहिए कृष्ण का। स्मरण आर हानि कर चेतन है, तो भविष्य में कृष्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी स्मरणार हानि करतन है। इस भौतिक जगत में जो अविद्या और काम और कर्मों के द्वारा जो कष्ट पा रहे हैं, तो उनके श्रवण स्मरणार हानि, श्रवण और स्मरण करने के योग्य जो लीलाएं हैं उनको करने के लिए ही आप आए हैं। तो कृष्ण की लीलाएं बड़ी सरल हैं, जैसे ही सुनाई जाती हैं याद हो जाती हैं। तो कृष्ण को स्मरण करने का ये बहुत अच्छा उपाय है, कृष्ण कथा है ना। और कोई चर्चा है? मैं प्रश्न पूछूं? आपका प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि जो कंस था तो भगवान के अनुकूल स्मरण नहीं करता था, उसके बावजूद भी उसको वैकुंठ प्राप्त हो गया, इसका क्या कारण है? इसका कारण प्रभुपाद ने समझाया है, इसी तात्पर्य में प्रभुपाद ने समझाया है। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण के जन्म से उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जागते काम करते वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, किंतु उसकी यह वह कृष्ण भावना अनुकूल ना थी, अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना ज्यादा रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। तो उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। हाँ, आगे प्रभु लिखते हैं, निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य नहीं है। शुद्ध भक्त है तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह सर्वोच्च लोक गुरु वृंदावन भी नहीं जाना चाहता है ना। तो ये है अंतर। असुरों को भगवान मारते हैं तो देवर के धाम में जाते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो और आगे होते हैं, है ना। इसलिए जो शुद्ध प्रेम है इसमें मोक्ष से भी ऊपर है कृष्ण का शुद्ध प्रेम, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कृष्ण से शुद्ध प्रेम करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि हमारी सुख सुविधा के लिए जो है हमें भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। वो अगर कुछ कष्ट उठाकर के भी हर कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है तो वो ज्यादा प्रसन्न कर रहा है ना भगवान को। और कोई प्रश्न किसी का तो मैं प्रश्न करूं, आपका प्रश्न
जब करते समय और भी विषय याद आते हैं।
हाँ, इनका प्रश्न है कि जब करते समय बहुत से विषय याद आते हैं तो कैसे ध्यान को केंद्रित किया जाए, जब किस समय कैसे ध्यान को केंद्रित किया जाए। भगवान ने क्या बताया है, अभ्यास इंद्र कौन थे वैराग्य से कहे थे, अभ्यास और वैराग्य से इसको ग्रहण किया जाता है ना। एक तो अभ्यास सवेरे उठने का होना चाहिए, सवेरे उठने का अभ्यास होना चाहिए, सवेरे उठ करके स्नान करने का अभ्यास होना चाहिए, स्नान करके हरे कृष्ण जाप करना और मंदिर के कार्यक्रमों में भाग लेना है ना, ये होना चाहिए। जाप आप करते हैं तो भगवान गीता में कहते हैं या तो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम, जहां जहां ये मन चंचल और अस्थिर भागता है तथा सतो नियम आत्मनियम समय उसको वहां वहां से रोक करके और आत्मा में ही लगाना चाहिए। तो ये अभ्यास कहलाता है। और वैराग्य चार नियमों का पालन करना, नो 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 हमेशा चार नियमों में नो नो नो, तो ये वैराग्य कहलाता है। इस प्रकार से मन को शुद्ध किया जाता है। और कोई प्रश्न किसी का तो मैं प्रश्न करूं, इसमें भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए पांच सूत्र दिए हैं। सबसे पहला क्या है कौन बताएगा, मत्कर्म कृष्ण कर्म करने वाला है ना, इसका क्या मतलब है कौन समझाएगा। कृष्ण के लिए कर्म करना, जैसे धन्यवाद। हाँ, अगर आपके पास धन है तो कृष्ण का मंदिर बनवा दो, अगर आपके पास उतना धन नहीं है तो मंदिर पहले से बना हुआ है तो उसमें सेवा के लिए जमीन देना है, कुछ धन देना है, बैंक में डिपॉजिट करना पैसा, तो ये जो है ना मत कर्म कर्म है। फिर मत परमो का इसका मतलब प्रभुपाद ने क्या समझाया, इसका अर्थ क्या बताया प्रभुपाद ने, कृष्ण के भक्त बनना,
मुझको सब कुछ मानना, मुझको सब कुछ मानना।
मत कर्म कर्म मत परमो, हाँ, तो कृष्ण का धाम, कृष्ण की लीला है ना, इसमें प्रवेश करने की इच्छा होना। आप लोगों से प्रार्थना है कि बातें ना करें, कृपा करके ध्यान से सुने। धन्यवाद। तो मत परम कृष्ण के परायण होना, कृष्ण को ही परम लक्ष्य मानना, तो कृष्ण की लीलाओं का जो है श्रवण करना और कृष्ण की लीलाओं में आसक्ति पैदा करना, इच्छा पैदा करना कृष्ण की लीला में प्रवेश करने के लिए है ना। तो कई भक्तों की प्रार्थना है कि मुझे अपना दास बना लीजिए, है ना, गोपी भरतो पति कमलियो दास दास हम दासा, जो गोपियों के भरता है उनके चरण कमलों का दास का मैं दास हूं। तो ये मत परमो है। और इसके बाद क्या प्रभुपाद ने समझाया, मत भक्ता, मत भक्ता का क्या मतलब, भक्तियों की नौ विधियां हैं उनमें से कोई एक या एक से अधिक, नौ की नौ भी हो सकती हैं, या कोई एक भी भक्तियों की विधि को अपनाए, लेकिन क्या विशेषता क्या होती है, 24 घंटे लगा रहे, 24 घंटे लगा रहे हैं, तो ये है मत भक्ता। इसके बाद क्या है, संगवर्जिता आसक्ति से रहित, है ना, तो आसक्ति से रहित में प्रभुपाद ने क्या समझाया, एक तो नास्तिक, नास्तिकों का संग नहीं करना, मनोधर्मी का संग नहीं करना, सकाम कर्मी का संग नहीं करना, और इससे भी ऊपर प्रभुपाद ने समझाया बहुत ऊंचे जो भक्त हैं वो बहुत ऊंचे भक्त हैं, तो वो यहां तक कि कृष्ण के धाम में भी नहीं जाना चाहते, गुरुधाम में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? उनका एक ही लक्ष्य है कृष्ण की सेवा करना, और इसके अलावा जितने प्रकार की आसक्तियां हैं उन सबको वो त्याग देते हैं। तो वे जो है कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो जो ना अपनी हर प्रकार की सुख सुविधाओं को भी वो त्यागने के लिए तैयार रहते हैं, है ना, संघवाद जी रहा। जैसे कि प्रभुपाद जी तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने गुरु के आदेश से 70 साल की अवस्था में वो गए, है ना, तो वृंदावन में तो उनकी आसक्ति थी, इन तो भी वृंदावन की आसक्ति को छोड़कर के भी वो अमेरिका गए अकेले, और कितना कष्ट उठाया उन्होंने, तो संघ वर्जिता का ही मतलब है बहुत ऊंचा भाव है, हर कोई नहीं हो सकता इस तरह की संघ वर्जिता है। और इसके बाद क्या है, निर्व्यरा सर्वभूतेषु, वैसे संघ वर्जिता का मतलब सर्वभूतेषु भी कह सकते हैं, ये तीन जो सूत्र हैं उसमें तो कृष्ण से संबंधित बातें हैं, कृष्ण कर्म करना है, कृष्ण को परम मानना है और कृष्ण का भक्त बनना है, और वह संघ वर्जिता भी सर्वभूतेषु कह सकते हैं, सब प्राणियों में संग यानी आसक्ति से रहे ना, और फिर निर्वैरा सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के प्रति निर्वैर होना, कोई बैर नहीं रखना, है ना, ये है। हाँ,
जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा कि जो सकाम कर्मी है उनके बीच में मत रहे, तो प्रभुपाद जी ने रह के उन्होंने प्रचार कर दिया, तो बात में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा?
हाँ, इनका प्रश्न है कि प्रभुपाद ने इसमें बताया है कि सकाम कर्मियों के बीच में नहीं रहना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी तो रहे तो उसमें कुछ अंतर आया,
मतलब इस बात में कुछ अंतर?
इनका प्रश्न है इस बात में, इस बात में कुछ अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी जो है जब उन मायावादियों के बीच में रहे तो प्रभुपाद जी उनके सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुए, ठीक है ना, लेकिन जब संग करते हैं, है ना, तो संग करने का मतलब ये है कि उनकी बातों को श्रवण करना, उनकी बातों को श्रवण करना, उनकी बातों में ज्यादा रसास्वादन करना, इसको रस बोलते हैं, रसास्वादन करना, संघवर्जिता का ये मतलब है कि सर्वभूतेषु। प्रभुपाद जी जब थे तो उनका संग नहीं कर रहे थे, उनको संग देने का प्रयास किया लेकिन वे उनका संग नहीं ले रहे थे, है ना, आखिरकार तो बाद में उनका संग छोड़ दिया, है ना, डॉक्टर मिश्रा, तो वे मायावादी थे। प्रभुपाद जी के संग से उनके जो विद्यार्थी थे, डॉक्टर मिश्रा के विद्यार्थी हैं, वो आकर्षित हो रहे थे, अगर प्रभुपाद जी थोड़ा सा प्रयास करते तो सब के सब विद्यार्थी उनके ही ग्रुप में आ जाते हैं। लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने मतलब सोचा, विचार किया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर मुझे उन्होंने जो है ना जो मौका दिया रहने का, है ना, तो मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं आप उनको खोलूं उनके तरफ से। जय श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गोविंदाय भगवान की, श्री श्री सीताराम कृष्ण हनुमान की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
गौर हरे गौर हरे
हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Yeah.
राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे